सदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नमुना तीरा बन सारे नाती राधा माधवा कुंजा बिहारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन सारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु न वैष्णवास श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा प्रिय वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयैव च पते राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय दैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक संख्या 16 विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः भयोरपि दिष्टुन्तुम् अन्यो तत्वदर्श भी अन्यो तत्वदर्श भी पढ़िए
विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वा अनयोस्तत्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावते
सतः उभयोरपि दिष्टुन्तम् अभयोरपि दिष्टुन्तम् अभावः परिवर्तनशील गुण विद्यते संदेह अनयो इनका तत्व उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता तो प्रकृति होना चाहिए ना। अपरा तथा परा प्रकृति के कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के। न सत विद्यते भावो न भावो विद्य दिष्टुन्तस्त्व अनयो तत्व दर्शिपि। अनुवाद दोहरा। आत्मा और भव पदार्थ है, ये बात है। एक मूविंग है, एक नॉन मूविंग है, ये भी है। जैसे जीव है शाश्वत, पौगंड कौमार अवस्था से पौगंड अवस्था में, फिर केशवर हुए, फिर दाढ़ी मुछा गया है, फिर दाली है, जल है, अग्नि है, वायु है, काश उसमें मिल जाता है। पंच तत्व, पंच तत्व में शरीर में भूमि भी है ना, जब ऐसे पसीना ये करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए पानी डाला जाता है, फिर मिट्टी को रौंदा जाता है, फिर उसको गोलाकार बनाकर, फिर आकाश मने अवकाश, घड़ा में आकाश है ना, रिक्त जगह, आकाश का मतलब रिक्त है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, क्षितिजल पावक गगन समीरा। आ पंच तत्व विधि रचा शरीरा, पांच तत्व से शेष तत्व है पंखा में भी, लेकिन पंखा को चलाने के लिए विद्युत शक्ति चाहिए। शरीर भी एक यंत्र है, इसको चलाने के लिए आत्मा और परमात्मा, इसको क्षेत्र भी है, एक क्षेत्रज्ञ है, एक परम क्षेत्रज्ञ है आत्मा और परमात्मा। तब परमात्मा ने इसको किराए पर दे दिया है। कौन मरता है? चैतन्य जी। शरीर बार बार मरता है और शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही बूढ़ा है, कुछ बच्चे पैदा करता है, कुछ सृजन करता है, कुछ समय रहता है, फिर शरीर को छोड़ देता है। तो मिलेगा नहीं वो रूप, इतना सुंदर रूप है चैतन्य जी, लेकिन ये शरीर बाद में 10 साल, जो 5 साल पहले का जो शरीर था वो शरीर आपका मर गया। शरीर प्रति क्षण बदल रहा है, शरीर के जो फोटो, अरे फोटो में कंपेयर नहीं, कम पहचान में आता है। यही शरीर 20 साल के बाद आपका अलग दिखाई देगा, मतलब पहले भी 9 महीने जीव जो है माँ के गर्भ में बहुत यातना में रहता है। 9 महीने वो इतना अच्छा जगह नहीं है, वो बहुत संकीर्ण जगह में, बहुत छोटा जगह में, जहाँ खेल नहीं सकते हैं, ज़्यादा हाथ पांव नहीं इधर उधर फेर सकते हैं, बहुत ये रहता है इसे। आप अथु में फोटो में देखे हो ना, गर्भ शिशु माँ के गर्भ में बहुत छोटे जगह, बहुत ये में रहता है, दबाव में रहता है, अपान वायु का भी दबाव होता है, जठराग्नि का भी ताप होता है, मल मूत्र का भी ये होता है, और कृमि भी, छोटे छोटे कृमि काटते हैं, बहुत गर्मी होता है वहाँ, फैन नहीं है, एसी नहीं है, ऑल आउट की सुविधा नहीं है, जब मच्छर काटते हैं तो ऑल आउट लगा दी, वहाँ कोई सुविधा नहीं। माता के गर्भ में रहला आ विनती हरि से कैला, माँ के गर्भ में जीवात्मा बहुत दुखी रहता है, वो भी सीधे सीधा खड़ा नहीं, उल्टा खड़ा रहता है, गर्भ में जीव सिर नीचे रहता है, 9 महीने शीर्षासन में करिए बाबा रामदेव वाला 9 महीने शीर्षासन करके आए, यहाँ 9 मिनट करने में नानी मर जाती है 9 मिनट में भी नानी याद आ जाएगी, और 9 महीने हम शीर्षासन करके आए हैं, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। कोई ऐसा क्यों भगवान करते हैं कि उसमें सुविधा है जन्म लेने में, पैर होगा तो पैर में, कभी कभी पैर जिसका नीचे से होता है उसको जन्म लेने में बहुत दिक्कत होता है, सिर ये है ना, और पैर दोगे तो इधर उधर हो जाएगा, तो गर्भ में फंस सकता है, हो सकता है, इसलिए सिर होता है, सिर आसानी से कोई भी कहीं घुसता है तो सिर से घुसता है ना, पैर से घुसेंगे यहाँ घुसेंगे तो पैर से घुसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सिर से घुसे तो ऐसे माँ के गर्भ से सिर से बाहर प्रवेश करता है, बाहर प्रवेश करना सिर से आसानी होता है, इसलिए सिर नीचे रहता है। बराबर बात है कि नहीं? तो माँ के गर्भ में 9 महीने हम इतना कष्ट में थे, वहां भगवान से हम प्रार्थना करके आए हैं कि मुझे इस दुख से बाहर करिए, मैं आपका भजन करूंगा, अब माया में नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ कर फिर भूल करके वही बातों में हम रह जाते हैं। माता के गर्भ में रहला विनती हरि से कैला, भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु बहुत मैं मर गया यहाँ, अब मुझे बाहर करिए गर्भ से। फिर आकर के मेरी चेतना फिर भटक जाती है, भूल जाता है आदमी, यहाँ आके माया में भूलैला भजन ना कैला। बहुत जो विशिष्ट आत्मा होते हैं उनको गर्भ में ही भगवान का स्मरण हो जाता है। से प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही भगवत ज्ञान हो गया, नारद जी उपदेश किए कयाधु को तो गर्भ में ही वो भगवत धर्म का ज्ञान हो गया, और मनु को माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की का ज्ञान प्राप्त हो गया था। अर्जुन सुभद्रा से चक्रव्यूह की लड़ाई का वर्णन कर रहे थे तो विज्ञान भी कहता है कि 5 महीने में गर्भ शिशु को चेतना हो जाती है, गर्भ में 5 महीने में ना, 5 महीने में उसको चेतना हो जाती है गर्भ में। आप लोग पढ़े हो ना, वैज्ञानिक हो आप लोग, अब तो बहुत सारे विज्ञान के छात्र हैं। सात महीने में होता है, 7 महीने में बोल रहे हैं, और कोई है कितना महीने में? 7 महीने में होता है, 5 महीने, 7 महीने में, 7 महीने में हो जाए, 7 महीने में सुनने लगता है। माँ जो देखती है सुनती है जो, तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ने लगता है। इसीलिए ना प्रहलाद को कयाधु के माध्यम से ज्ञान हुआ, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की लड़ाई का ज्ञान हुआ। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भगवत साहित्य पढ़ती हैं, भगवान का सुंदर चित्र देखती हैं कि वैसा बच्चे का भी चरित्र निर्माण होगा। तो जो लोग हैं वो भगवान के विषय में पढ़ना, भगवान का जप करना, भगवत प्रसाद खाना, तो बच्चे का वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाता है। जो माताएं भक्त हैं तो उनका गर्भ शिशु, उसको भी वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाता है, गर्भ से ही। जो माँ पढ़ती है सुनती है खाती है तो उसको भी मिलता है, माँ प्रसाद खाती है तो बच्चे को भी माँ के नाल से प्रसाद मिलता है। यही पदार्थ था आत्मा का अंतर है, स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, दो प्रकार के चिंतक हैं, एक निर्विशेषवादी और सगुणवादी। एक साकार रूप को मानने वाले, एक निराकार। तो दोनों चिंतकों ने दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के अध्यात्मवादियों ने यह माना है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर परिवर्तनशील है, शरीर का कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर जब जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर अपने फिर मूल रूप में आ जाता है। जला देने पर क्या होता है? शरीर को जला देने पर क्या बचता है? राख मिट्टी, ये नहीं बचता है कि सोना चांदी होता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का शरीर जलाइए चाहे उनके चपरासी का, वही बचेगा। मिट्टी राख के रूप में, या कोई जानवर पक्षी खा जाता है तो मल बन जाता है, चाहे कि ब्राह्मण का शरीर हो चाहे किसी का भी, कोई जंतु खा जाए बाज पक्षी, जैसे पारसी लोग शरीर को जलाते नहीं हैं, वो लोग इसे टावर पर, बड़ा बड़ा टावर है जैसे पारसी वेल है, तो पहले उसे बड़ा स्तंभ पर मृतक शरीर को रख देते हैं, बाज इत्यादि पक्षी खा जाते हैं उसके मांस को, हड्डी बचाते कुआं है पारसी वेल उसमें डाल देते हैं, पर नमक डालकर गला देते हैं, तो लोग नगाड़ते हैं ना सड़ाते हैं, वो रखते हैं जंतु लोग खाते हैं, बाज पक्षी इत्यादि खा जाते हैं। तो शरीर को कोई जानवर खा गया पक्षी खा गया तो मल बन जाता है, बिकम ए स्टूल, और गाड़ देने पर सड़ करके कृमि बन जाता है, फिर मिट्टी बन जाता है। शरीर की तीन ही गति है, कृमि बीट भस्म संगीतम, तीन संज्ञा रह जाता है शरीर का, कृमि बीट भस्म, बीट माने मल, कृमि माने शरीर, गाड़ देने पर सड़ कर कृमि बन जाता है, और बीट कृमि बीट माने मल, कोई जानवर शरीर को खा गया तो मल बन गया, और जला देने पर भस्म, कृमि बीट भस्म संगीतम। इसलिए शरीर जो है ये नश्वर है, इसको आत्मा है तब ये लगता है कि शरीर चेतना में है, चैतन्य है, शरीर वास्तव में चैतन्य नहीं है, ये आत्मा है, इसलिए इसमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसमें ताजगी है, इसमें खाने की शक्ति, बोलने की, सूंघने की, चलने की, ये शरीर की शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति से। अभी पंखा स्विच बंद कर दें पंखा ये हो जाएगा, इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं सूंघेगा भी नहीं, कहेंगे कि चलिए चैतन्य जी तो मान लीजिए आपका हरि बोल हो गया अच्छे पड़ जाएंगे, कितना भी हम लोग चैतन्य जी चले ना, हिलेंगे डोलेंगे भी नहीं, कहाँ गए वो चैतन्य जी लोग बोलते हैं मर, कभी कभी लोग मरने वाले बोलते हैं अब हम जा रहे हैं, आप लोग संभालिएगा, बुढ़िया को भी देखिएगा, हमारी लड़की कहाँ है उसको बुला दीजिए, अब हम जा रहे हैं। या पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी, बोलेंगे हम चलेंगे, कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं है, जैसे आप बोलेंगे हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कहाँ का टिकट से होता है ना, कभी कि हमने टिकट बुक किया है कलकत्ता जाना है, ये ट्रेन है इतना बजे की है, तो लोग ये तो जोते हैं कि अब हम जा लेंगे, कहाँ जाएंगे कौन सी ट्रेन से जाएंगे ये पता नहीं, तो हमें जाना ही है, जाना तो है ही है ना, तो पता करना चाहिए हम कहाँ जाएंगे, जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब कहीं यात्रा पर जाना है तो एक महीना दो महीना पहले टिकट बुक करते हैं, सब कुछ सामान लेते हैं, वहाँ फोन करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, गेस्ट हाउस चाहे रिश्तेदार को बुलाते हैं लेने के लिए, आप सबसे बड़ा यात्रा पर जाने कोई तैयारी नहीं, इजी जर्नी, ये जर्नी है, हम जर्नी पर हैं, यात्रा पर हैं, तो इसको इजी करने के लिए हमें सब पहले से तैयारी करना चाहिए, हमें इजी जर्नी करना है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, अनेक प्लैनेट हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ करत, भाई आपको चंद्र लोग जाना है, सूर्य लोग जाना है, स्वर्ग जाना है, ब्रह्म लोग जाना है, या वैकुंठ जाना है, तो उसके लिए तैयारी करना है ना, मान लीजिए आपको बैक होम बैक टू गॉडहेड जाना है तो उसके लिए तैयारी करना है, बिना तैयारी के लोग ये करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करना चाहिए, जीने की कला नहीं, मरने की कला जरूरी है। बहुत लोग आजकल योगा ये करते हैं, क्लासेस चलाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, कुत्ता भी जीने की कला सीखता है, उसको सिखाया नहीं जाता है। कुतिया बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा अपने आप जाता है स्तंभ पर, गाय बछड़े को जन्म देते बछड़ा को सिखा नहीं जाता कि यहाँ पर स्तन है पीना है ऐसे ऐसे, वो अपने आप उसको बाई नेचर उसको ज्ञान रहता है। बिल्ली बच्चा देती है ना, या बिल्ली देखे हैं आंख बंद रहता है, बिल्ली के बच्चे उनके आंख तुरंत नहीं खुलते, 3 दिन के 4 दिन के बाद खुलता है, लेकिन जन्म लेते वो जान जाते हैं कि कहाँ भोजन है, माँ के स्थान पर पहुंच जाते हैं। उनको कौन ट्रेनिंग दिया, कौन बताया? इसलिए जीने की कला तो हमको सबको मालूम है, मरने की कला सीखनी चाहिए। रूपा जी कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना है, हमें कृष्ण भावना में मरना है। अंत काले चम्मा में वह स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत नारायण अस्मृति, अंत समय हमें भगवान का स्मृति होना चाहिए, तब हम भगवान के धाम में जाएंगे। मरते समय माने भूत प्रेत की स्मृति है आपको, तो भूत लोक को जाएंगे। मरते समय अपने घर के पशुओं के विषय में, कुत्ते के बारे में माल जी चेतना है कि मरते समय कुत्ते का सोचेगा, कुत्ते का क्या है कौन देखेगा, तो कुत्ते के चेतना में अगर कोई मरता है तो कुत्ता बनेगा। मरते समय आपकी जो मानसिकता है, बहुत लोग मरते समय अपने पत्नी का चिंतन करते हैं। एक बार महाराज जी कह रहे थे कि बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को, बोला तुम लोग देखो हम तो जा रहे हैं, बुढ़िया को आप लोग दुख मत देना, उसको थोड़ा मैंने अपनी पत्नी को बुढ़िया बोलते, बुढ़िया को थोड़ा संभाल कर रहे हैं, मैंने उसका चिंतन कर रहे हैं कि इसको कौन देखेगा, बच्चे लोग संभालेंगे कि नहीं, तो चिंतन में मर जाता है अपनी पत्नी के, तो फिर स्त्री शरीर मिलता है। पुरुष अगर मरते समय स्त्री का चिंतन में मरता है तो स्त्री बनता है। अंत मति सा गति, अंत में हमारी जो मति होती है वही गति होती है। मान लीजिए मरते समय कोई कुत्ता का चिंतन कर रहा है तो कुत्ता बनेगा। से राजर्षि भरत मरते समय हरिण का चिंतन कर रहे थे, पालतू हरिण किए थे, तो सोचे कि इसको कौन देखेगा, तो जन्म के समय इसकी माँ मर गई थी, इसका माता पिता सब तो मैं ही था, मैं ही इसका पालन करता था, और मरते समय उसी चिंतन में मरे तो हरिण शरीर को प्राप्त हुए। तो हमें मरने की कला सीखनी चाहिए। जीने की क्या, जीने के लिए क्या हो तो सबको मालूम है, आहार निद्रा भय मैथुन तो सारे जंतु करते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं खाते हैं, कोई भय मारने आते तो भी झपट्टा मारते हैं भागते हैं, पक्षी भी भय से रक्षा करने के जाएंगे तो ऊंची डाली पर चले जाएंगे, पक्षी मान लीजिए नीचे नज देंगे तो ऊपर जाएंगे, उधर जाएंगे तो और ऊपर जाएंगे, कोशिश करते और ऊपर भाग जाएंगे, उसे नहीं तो उड़ जाएंगे, वो भी भय से रक्षा कर लेते हैं पक्षी भी। चींटी भी दबने पर भी काटती है, काटती है कि नहीं, वो भी भोजन के लिए घूमती है। आहार निद्रा भय मैथुन, छोटे छोटे जीव भी वो भी मैथुन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या बोलते हैं, सेक्स इंटर, उनको भी मालूम, सिखाया नहीं जाता है। मक्खी हो चाहे चींटी हो चाहे कबूतर हो चाहे वो, उनको कौन सिखाए? आजकल बोलते हैं कि इसका पढ़ाई करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए और चेतना खराब होगा ये सब चीज को ये सब चीज के पीछे आजकल मूर्ख लोग बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि कैसे लड़की लड़के संभोग करें कैसे, ये सब फालतू चीज है, कोई भी जोनी में किसी को सिखाए थोड़े जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये हर जोनी को सब प्रकृति के अनुसार उसको अपने आप ज्ञान होता है। तो मैं कहा ना कि बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो उसके बच्चे कुतिया का भी, वो हम लोग देखे हैं वो आँख 2-3 दिन के बाद खुलता है, बंद रहता है, ऐसा नियम है, लेकिन फिर भी बच्चे माँ आती है तो आहार से जान जाते हैं गंध से, और माँ वहाँ लेट जाती है, बच्चे उसके स्तन पीने लगते हैं। उनको कौन सिखाया है कि माँ के इधर स्तन होता है उसमें दूध होता है, उनका तो आँख भी बंद है फिर भी जाते हैं, एक बिल्ली इधर बच्चा दी थी, इधर स्वीट स्टॉल पहले यहाँ था, तो हम लोग देखे वो बिल्ली के बच्चे आंख बंद रहता है 4 दिन या 5 दिन ऐसे, वो उसको जन्म दी तो बच्चे उसका स्तन पीने लगे जन्म के कुछ ही समय के बाद। और गाय का भी हम लोग देखें, गाय बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा फिर थोड़ा देर के बाद चलना फिर वहां पहुंच जाता है माँ के स्तन पीने लगे। पक्षी को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया कौन बताता है, उनके पास तो घड़ी भी नहीं है, उनको मालूम हो जाए ब्रह्म मुहूर्त हो गया चुन 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 करने लगते हैं। हम तो अलार्म लगाते हैं उनको मालूम हो जाता है, उनको इतना परफेक्ट ज्ञान है कि अब भोर हो गया है अब जग जाना चाहिए, वो जग जाते हैं। पक्षी अपने घोंसले में कलरव करने लगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते, सोते नहीं हैं। हम लोग घड़ी लगाते हैं वो लगाते हैं फिर भी सो जाते हैं, 5 मिनट 5 मिनट बोलते हैं कोई जगह पर 5 मिनट करते करते सो जाते हैं, लेकिन वो लोग 5 मिनट 5 मिनट नहीं करते हैं जग जाते हैं। गाय बैल भी 4 बजे का तो जग जाएंगे बोलने लगेंगे, गाय भी बोलने लगेगी चारा डालो चाहे संकेत करने लगती है, वो 4 बजे गाय को भोजन डालेंगे। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक आराध्य के बीच। हमें सबसे पहला ज्ञान है कि हम देह नहीं है आत्मा है, हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता है शरीर का होता है, हम नित्य हैं शाश्वत हैं, शरीर भले बदल जाएगा ये हो जाएगा, पहला यही ज्ञान है कि हम देह नहीं है हम आत्मा है, हम मरते नहीं है शरीर मरता है, शरीर बार बार मरता है। तो इसको जो आत्मा के विषय में जान जाता है तो भगवान से भी संबंध को जान जाता है कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, हम उस पूर्ण के पूर्ण ब्रह्म के हम एक छोटा अंश हैं, जीव अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है, भगवान समुच्चय हैं, समग्र उनमें सब कुछ है, हम उनका एक छोटा अंश है, स्फुलिंग तत्व है, जैसे समुद्र का एक बिंदु पानी, वैसे हम बहुत सूक्ष्म अंश हैं भगवान के, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से हम समान हैं, मात्रात्मक दृष्टि से अंतर है। जैसे समुद्र का एक बिंदु पानी गुणात्मक दृष्टि से वैसा ही है खारा है, लेकिन मात्रा में सूक्ष्म है, एक बिंदु पानी ऐसे मलेंगे तो खत्म हो गया सूख गया, इन समुद्र के पानी को ऐसे सुखा नहीं सकते हैं, सुखा सकते हैं इसका। उसी तरह उस संपूर्ण भगवान के हम एक छोटा अंश हैं, हमारी शक्ति हर चीज सीमित है, हमारे काम करने की सब कुछ शक्ति, लेकिन जीव भी अविनाशी है चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है अविनाशी है चेतन है सहज सुख राशि है, ये भी आनंद आनंद इसका भी स्वरूप आनंदमय है, लेकिन भौतिक पदार्थ के संयोग से प्रभावित होता है, भौतिक शरीर में ना तो उसे प्रभावित लगता है कि हम भी दुखी हैं हम भी मर रहे हैं ऐसा होता है। इस शरीर के जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन के साथ हम भी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं, कार में बैठे तो कार के गति से आप भी चल रहे हैं, तो शरीर के क्रियाओं से ऐसा लगता है कि हम भी प्रभावित होते हैं। जैसे चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब जल में गिरता है तो प्रतिबिंब हिलता है कि नहीं, वास्तव में चंद्रमा हिल रहा है नहीं हिल रहा है, चंद्रमा वास्तव में नहीं हिल रहा है लेकिन उसका प्रतिबिंब जल में लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है, वैसे ही जीव का ये है। हरे कृष्ण धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की ताइगोर प्रेमानंदी।